أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة، تم ہو بہترین امت. نا اب اتنی بڑی خوشخبری آپ کو مل گئی کہ آپ کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یو آر دا بیسٹ. اور امت کیا ہوتی ہے؟ امت وہ نہیں ہوتی کہ جو سارے ایک ہی لینگویج بول رہے ہوں، ایک ہی علاقے کے رہنے والے. امت وہ ہوتی ہے جو ایک نظریے کی ہوتی ہے، ایک ان کی گول ہوتا ہے، ایک ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ امت ہوتی ہے. آج امت نہیں ہے نا، آج گروہ ہیں، آج قومیتیں ہیں. قومیت، ہم قوم کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ بس امت کو چھوڑو، قومیں. اب ہماری قوم کا بندہ چاہے وہ یہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کچھ ہے، مگر ہم بس ایک قوم کے. یہ نہیں، امت فرسٹ ہے اور قومیں بعد میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کو کہا گیا کہ وہ بہترین امت ہے. وہ کیوں بہترین امت ہے؟ کیا ان کے اندر کمال کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بہترین امت قرآن نے ڈکلیئر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو فضیلتیں فرمائی کہ جو مجھے دیا گیا ہے، وہ نعمتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی. ان میں ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، جن کے چہرے 14 رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، سب ایک جیسے رنگ کے ہوں گے. میں نے اپنے رب سے گزارش کی کہ اللہ اس تعداد میں اور اضافہ فرما دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی. سبحان اللہ، مسند احمد کی یہ بھی روایت ہے، اور بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں داخل ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، انبیاء پر جنت میں داخلہ حرام ہے، اور جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے، دوسری امت پر داخلہ جنت میں حرام ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے اس امت کی. تو یہ میں نے اور آپ نے کوئی حاصل نہیں کی کوئی ایپلیکیشن دے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، اس کے اوپر ہمیں اتنا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت ہے نا، ذرا سی بھی نسبت، اس کے اوپر بھی دیکھیں یہ ہے، یہ ملنے والا ہے. کسی کا کمال نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی وجہ کہ یہ آپ کی امت ہے. اللہ اکبر. تو پھر یہ تو تھوڑی سی میں نے آپ کو فضیلتیں بتا دی اس امت کی، اس کے بعد آگے تو دیکھیں. اخرجت للناس، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ یعنی لوگوں میں کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اس لیے تم بیسٹ ہو کہ تم لوگوں میں بھلائی کی دعوت دیتے ہو، حکم دیتے ہو. وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے تم روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے. ویسا ایمان، ایسا ایمان نہیں کوئی پیدائشی ایمان، ہمارا تو نام مسلمانوں والا ہے تو بس ہمارا ایمان ہو گیا، نہیں، بلکہ تمہارا ایمان جیسے ریکوائرڈ ہے ایمان. یہ ایمان بعد میں کیوں آیا؟ ایمان کو تو ہمارے نزدیک تو پہلے سب سے آنا چاہیے، اس لیے کہ جب ایمان ہوگا تو یہ کام مکمل ہوں گے. ایمان کے بغیر یہ کام بھی کوئی کرے تو کوئی یہ کام کا فائدہ نہیں. پہلے دو کاموں کی وجہ سے ہی مسلمان دوسری امتوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں. ایمان کا دعویٰ تو اور بھی کرتے تھے، مگر یہ دو کام ہیں جن کی وجہ سے تمہاری فضیلت ہے دوسروں پر. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے حج کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو یہ دو शरायत पूरी करता है वही है जो के इस खैर उम्मत में से है। जो ये दो शरायत पूरी नहीं करेगा उसका फिर खैर उम्मत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। यानी क्या, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की और जो ईमान बिल्ला, तीन शरायत हो गई। जो इनको पूरी करता है वो ही है जो खैर उम्मत में से है, और जो नहीं करता तो फिर वो ये इसको ना समझे कि मैं को वो ये ताज पहन के समझे कि भाई मैं खैर उम्मत में से हूँ, वो खैर उम्मत में से नहीं है, वो इस बेहतरीन उम्मत का पार्ट नहीं है। क्योंकि इस बेहतरीन उम्मत की तो ये है अल्लाह ताला ने जो उसकी शरायत बता दी, ये कंडीशंस बता दी, तो जो इस पोजीशन को हासिल करना चाहता है वो तो उसको ये काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बगैर इन कामों की किए हुए कोई इंसान अपने आप को इनमें शामिल समझ ले, ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये काम कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये काम फर्ज है कि सुन्नत है कि नफल है कि क्या है, हम तो ये सोचते हैं ना। देखें, जब कह दिया गया ना कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इसी वजह से कि तुम ये काम करती हो, तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब हजरत उमर के इस कॉल से सबको समझ आ गई ना। अब थोड़ा सा आते हैं इस चीज की तरफ कि क्या होता है मारूफ, क्या होता है मुनकर, और अमर कैसे हुक्म कैसे देते हैं, क्या डंडा लेके खड़े हो जाएं सारों को एक टीचर की तरह या एक पुलिस वाले की तरह या एक फौजी की तरह बस खड़े होके लोगों को सीधा कर दें, ऐसे करना ही। अमर के स्टेजेस होते हैं, अमर हुक्म करने को भी कहते हैं, हुक्म देना भी होता है, नसीहत करना भी होता है, एडवाइस करना, किसी को एनकरेज करना भी होता है। कभी कभी आप किसी को एनकरेज करके भी, उसकी हौसला अफजाई करके भी उसको मारूफ के ऊपर दावत देते हैं, आप किसी को डांट डपट के भी करते हैं, किसी को शाबाश दे के भी करते हैं। यानी इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से अमर बिल मारूफ, किसके साथ कर रहे हैं बात, आपका कितना दायरा कार है, आपका कितनी अथॉरिटी है, कितना आपका इख्तियार है। आप देखिए, जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं वो आप अपनी दोस्त के साथ नहीं कर सकते, जो अपनी दोस्त के साथ कर सकते हैं वो बाहर किसी और के साथ, मस्जिद में कोई आता जाता उसके साथ नहीं कर सकते। कि डिफरेंट फॉर्म्स होंगे डिपेंडिंग ऑन कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं और आपकी कितनी ज्यूरिस्डिक्शन है, आपकी कितनी अथॉरिटी है। ठीक है, मतलब आप वालदैन के साथ उस तरह अमर बिल मारूफ को भी, वालदैन को भी करना पड़ता, आप नहीं कर सकते उस तरह हस्बैंड के साथ उस तरह नहीं कर सकते जितना अपने बच्चे के साथ कर सकते। तो बाज जगह ये रिक्वेस्ट भी होती है। ठीक है, तो अमर को समझे पहले, तो अमर क्या है, और बाज दफा सिर्फ अपने किरदार से और अपने अखलाक से ही हुक्म देना होता है। यानी इंसान इस हद तक भी आ जाता है कि आप अपने आप खुद ही करते रहते हैं ताकि दूसरे को एक तरह से आप हुक्म ही दे रहे हैं। जब आप खुद नमाज के लिए खड़े हो गए तो जिनको आप नहीं कह सकते, जो ऐसी आपकी अथॉरिटी ही नहीं है वहां पे, उनको आपने नमाज पढ़ के दिखा दी कि जो आप एक तरह से उनको एक दावत दे रहे हैं। तो दावत देना भी अमर है, किसी को दावत देना, दावत से मतलब खाने की दावत नहीं, भलाई की दावत। ठीक है, तो किसी को इसकी दावत देना ये अमर बिल अमर है। ठीक है, तो पहले हमने अमर को समझा, अब आए मारूफ की तरफ। जानी पहचानी भलाई, वालदैन के साथ उसने सलूक है, सच बोलना है, ईमानदारी है, रिश्तेदारों के साथ भलाई है, यतीम के साथ उसने सलूक है, गरीब की मदद करना है, मिस्कीन बेवा की मदद करना है, और भलाई सबसे बड़ी भलाई क्या है, तौहीद, एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। और वह तन्हाउना, और तुम रोकते हो। अब रोकने का भी यही अमर, अमर का उलट नहीं है। ठीक है, अब रोकने के लिए भी डिफरेंट स्टेजेस है। रोकना भी हर एक को, ये नहीं खड़े होते डंडा पकड़ के खड़े हो जाए रोकना, कहीं प्यार से रोकना है, कहीं डांट के रोकना है, कहीं किसी को कोई ऐसी बात कह के रोकना है जो कि उसके लिए उसके दिल को छू जाए। तो रोकने के भी डिफरेंट तरीके होंगे, वो भी डिपेंड करता होगा कि आप किस अथॉरिटी को रखते हैं। ये मैं इतना एक्सप्लेन पता है क्यों कर रही, मैं वैसे भी जा सकती हूँ, लेकिन इसलिए कि जब आपने अमल करना होगा तो ये बातें अगर आपको पता होंगी तो तभी करेंगे ना। अगर पता ही नहीं होगी, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर आज हमने पढ़ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आपको पता है नहीं करना क्या है, प्रैक्टिकली इसको हमने अप्लाई करना है, इस वजह से सिर्फ हमें इतनी डेप्थ में जाना पड़ता है, वरना कोई मुश्किल नहीं है, ये अल्फाज भी मुश्किल नहीं है, चलते जाओ बस। तो अनिल मुनकर, मुनकर भी जानी पहचानी जो बुराई है, इंसान की तो तबीयत अंदर से कहती है कि ये खुदा है, सबसे बड़ा मुनकर तो क्या है, शिर्क, शिर्क, और उसके बाद सारी ईवल्स, सारी बुराइयां, इनको इंसान की अकल भी कहती है, जो शरीयत भी कहती है कि ये बुरी चीज है, सारी बेहयाइयां आ गई, सारी फहाशियां आ गई, बेईमानियां आ गई, झूठ आ गया, सूद आ गया, जिना आ गया, जितनी भी बुराइयां, तो इसमें छोटी से लेके बड़ी तक हर बुराई आ गई। इवन ये कि आप किसी को किसी जगह पे कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं, ये मुनकर है, उससे रोकना दूसरे को। तो मुनकर सिर्फ ये नहीं है कि नमाज कोई नहीं पढ़ा तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों नहीं पढ़ रहे नमाज, ये सिर्फ मुनकर नहीं है, ये मुनकर में सारी बुराइयां आ गई, ठीक है। तो आप उसको जब रोकते हैं, जब आप उसको कहते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो, एक छोटी सी की बात है ना, आप इसको शायद आपने कभी सोचा ही ना, आप ट्रैफिक है, अब आप उसके अंदर सही नहीं कोई चल रहा, मुनकर है, आप उसको रोकते हैं कि नहीं भाई तुम अपने रास्ते के अंदर चलो, मुनकर है। देखो रिश्वत ना दो, रिश्वत से आपने दूसरे को रोका, ये मुनकर से रोका है। तो इसके भी दर्जे हैं, याद रखिए, जैसे मारूफ के लिए दर्जे हैं, इसी तरह इसके भी दर्जे हैं। और देखिए भलाइयों के काम तो सारी दुनिया करती है, बड़ी भलाइयों के काम कर रही हैं, बड़े वेलफेयर के, हो सकता है लोग यतीम खाने बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, लेकिन मारूफ में ना सारी भलाई के काम आ जाते हैं, जो डिस्टिंक्शन है, जो खास क्वालिटी इस उम्मत की है, जो किसी और के अंदर नहीं है। और मैंने जैसे आपको ये बताया कि जब आप तौहीद की तरफ दावत देते हैं तो ये सबसे बड़े मारूफ की दावत है, जब आप किसी को गुनाहों से बचने की दावत देते हैं तो ये सबसे बड़ी दावत है, इसलिए क्योंकि ये उसकी आखरत को संवार देगी कि ना, एक तो है वो भलाई के काम दुनिया के सिर्फ कर रहे हैं, आप इंसानियत की भलाई के लिए उठे हैं, तो ये काम किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, ये अल्लाह ने जिम्मा लगाया है, ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की है, जिस पोजीशन में भी उम्मत मुस्लिमा होगी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ती है। देखें, याद रखिए एक बात, अगर आप ये कहते हैं मैं तो नहीं ना ये काम करती, मैं तो नहीं ये बुराई करती, तो ये सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि गुनाह को ना करना अलग बात है और गुनाह से नफरत करना यह एक अलग बात है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे गुनाह नहीं करते मगर वो उन गुनाहों से नफरत भी नहीं करते, कहते हैं ओके सो व्हाट। आज आप देखें, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये जो होमोसेक्सुअल्स हैं इनके बारे में, यानी कौम लूत वाला अमल जो करते हैं लोग, उनके बारे में बहुत सारे मुसलमान ही ऐसे हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं करते ना, लेकिन हम इसको बुरा भी नहीं जानते, तो कोई नागवारी नहीं है उनके दिल के अंदर इसके लिए। तो ये जरूरी है कि पहले बुराई को जाना जाए, तो इल्म जरूरी हुआ आपके लिए कि मुनकरात भी क्या है, फिर उसके बाद आप उस बुराई से नफरत भी रखते हो, ऐसा नहीं हो कि बुराई आपके सामने हो रही, हम तो नहीं ना करते, हम तो नहीं रिश्वत लेते, हम तो नहीं ये बुरा काम करते, मैं तो नहीं करती, ये काफी नहीं है, याद रखिए। यहां से पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं तो नेक बन जाऊं और आप भी नेक बन जाएं, आप अपने घर में अल्लाह अल्लाह करती रहे, मैं अपने घर में अल्लाह अल्लाह करती रहूं बस। लेकिन जब हमने हजरत उमर के बारे में ये सुन लिया कि उन्होंने ये आयत पढ़ के क्या फरमाया था, जिसको ये पसंद है कि इस उम्मत में से हो उसे अल्लाह की इस शर्त को पूरा करना होगा, इससे आगे हमें बढ़ना है कि हमें दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी मारूफ की दावत देनी है, कहीं हुक्म दे के करेंगे, कहीं दावत देंगे, कहीं बुलाएंगे। जब आप किसी को कुरान की तरफ भी बुलाती हैं तो क्या करती हैं, सबसे बड़ी नेकी तो ये है, सबसे बड़ी खैरख्वाही ये है, आप उसको मारूफ की दावत दे रहे हैं। इसी तरह मुनकर से रोकना, देखिए आपको वो हदीस याद होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम कोई बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो, यानी मना करो, अपने हाथ खड़े हो जाओ और कहो कि मैंने ये नहीं होगा, ठीक है। अगर इसकी ताकत नहीं है तो अपनी जुबान से उसको बुरा कहो कि नहीं ये करो, उसको मना करो अपनी जुबान से, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करो, फिर उसको अपने दिल में तो बुरा जानो। और फरमाया ये कमजोर तरीन ईमान है, कमजोर तरीन ईमान, यानी अगर इस ये भी नहीं है तो एक हदीस में आता है फिर उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। तो याद रखिए बुराई की नफरत होना जरूरी, तभी तो देखिए ये ना कहने की बातें नहीं होती, ये कहने की बातें नहीं होती कि देखिए आप बुराई को देखें तो आपको मना करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान के अंदर ईमान होता है ना, ईमान, जब अल्लाह से मोहब्बत बड़ी होती है ना, तो फिर उसकी नाफरमानी इंसान को गवारा ही नहीं होती, उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसको कुछ अंदर होने शुरू हो जाता है, अंदर उबाल पड़ने शुरू होते हैं, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये किसी के बताने का बात नहीं है। नहीं जी आपने ये काम करना है, अगर बताना ही है तो देखो फिर क्या ईमान है किसी का, आपको कुछ होता ही नहीं, अब कोई आपको बताएगा जी आपको मैं मुनकर देखें तो जी आपको रोकना चाहिए, ये बताने की बात है, तुम्हारे अंदर खुद इतनी ईमानी गैरत होनी चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही, क्यों हो रही है, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा में जाके बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इतनी ज्यादा पेन होती थी, इतना फील करते थे कि क्यों यहाँ पे ये बुराइयां हो रही, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाते थे लेकिन कितना दर्द था अंदर, क्यों माशरे के अंदर ऐसा है। आज अपने घर के अंदर देखते हैं हम तो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे अपने बच्चे गलत काम कर रहे थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग बात है बच्चे सुने नहीं और आप उनको बताते जा रहे हैं, मगर अगर ऐसा नहीं है और आपके सामने बच्चे गलत काम कर रहे हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो ना बच्चे हैं ना क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ऐश करने दो, आपकी बेटियां ऐसे ड्रेसअप होके बाहर जा रही हैं, आपको पता है कि ये गलत है लेकिन आप कभी कहते नहीं उनको, कोई मना नहीं करते आप, क्योंकि आपने अपने टर्म्स बच्चों के साथ अच्छे रखने, तो क्या आपने नागवारी की। देखें हमारे सियासी लीडरों को कोई बुरा कह दे ना तो हम आग बगोला हो जाते हैं, फिर आपकी अपनी शान में कोई जरा भी गुस्ताखी कर दे फिर देखो वो अपने घर पहुंचेगा कैसे, ले तय करके रख देंगे, इनमें तो हम बड़े अकलमंद हैं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ा जा रहा हो तो हमें कोई फर्क ही ना पड़े, ये किस किस्म की मोहब्बत, उससे ज्यादा तो मोहब्बत आपको अपने सियासी लीडर से है, अपनी पार्टी से है, इसी तरह और लोगों के कई भी एफिलिएशन हो सकती है, सिर्फ सियासत ही नहीं, कोई चीजें हो सकती हैं जिन पे वो जरा सी बात के ऊपर भड़क उठते हैं, उनके खानदान को कुछ कह दिया जाए, उनके बड़ों को कुछ, बाबो अजदाद को कुछ कह दिया जाए, उनकी बरादरी को कुछ कह दे, किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है, फिर देखें उसके बाद वो क्या करते हैं, लेकिन क्या अल्लाह की जात और उसके रसूल की बात ही इतनी सस्ती है कि उसके ऊपर किसी को कुछ भी ना हो, अपने सामने देखते रहे मुस्कुराते रहे, हाँ हमारे टर्म्स क्यों खराब हो भाई। याद रखिए तामरूना बिल मारूफ, फिर भी लोग कर लेते हैं, आ जाओ भाई नमाज पढ़ लो, आ जाओ भाई ये कर लो वो कर, लेकिन तनहाउना अनिल मुनकर तो ऐसे है जैसे भेड़ों के छत्ते में आपने हाथ डाल दिया, वो तो करने खड़े हो तो फिर देखो जरा या लोग तो फिर पीछे पड़ जाते हैं, और ये कुछ को गवारा कहते हैं हम क्यों अपने पीछे डालें किसी को, हमें क्या मुसीबत है। तो उल्टा आज वो वक्त आ चुका है कि इससे उलट काम हो रहे हैं, और वो उलट काम क्या है कि हम बुराई को भलाई कह रहे हैं और भलाइयों के ऊपर तेवरियां चढ़ा रहे हैं, हम किसी को देखते हैं मसलन है कि उसने ऐसा चुस्त लिबास पहना हुआ कि वो सी थ्रू है, या इतना चुस्त है कि उससे उसका सारा जिस्म पता चल रहा है उसकी शेप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, खुशबू भी नहीं पाएगी, और हम क्या कहते हैं बहुत स्मार्ट लग रही है, वाह क्या बात है, हम ऐसे कमेंट्स देते हैं फेसबुक पे उस पे, हम जाके उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो एनकरेजमेंट किस पे होनी चाहिए थी, तामर किस पे होना चाहिए था, आपको किस पे हुक्म देना था, मारूफ पे, एनकरेजमेंट, शाबाशी, हौसला अफजाई, वो भी सारा अमर में आता है, और आपने किस पे तामरून किया, मुनकर पे। समझ आ गई आपको बात? जिस वक्त कि हम लोगों को कहते हैं कि नहीं 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 गुलाम आप ना पढ़ना, ये तो आपको वहाबी बना देंगे, ये कुरान इनसे पढ़ने की नहीं जरूरत है, क्या कर रहे होते? मारूफ का हुक्म दे रहे हैं या मारूफ से तनहौना कर रहे हैं? आज तो मारूफ से मना किया जाता है और मुनकर को अप्रिशिएट किया जाता है। कोई हिजाब लेना शुरू कर दे तो तुम क्या मासी बन गई, तुम क्या, देखो जरा अभी वो तुम्हारी एज आई है, हटाओ इसको। क्या किया हमने? खुद खुद सोचें, हमारे कमेंट्स सोचें, हमारी इनकरेजमेंट सोचें, किस चीजों के ऊपर होती है, खुद आप देख लें। कोई क्लासें लेना शुरू हो गया, हाँ देखा ना तुम हर वक्त बैठी रहती इसीलिए इतनी मोटी हो गई हो, वेट गेन हो गया तुम्हारा, तुम बैठी पढ़ती रहती ना, आप देखो अपनी हालत क्या तुमने बना ली, शक्ल देखो अपनी, बस पढ़ाइयां करती रहती। आप कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो उसको नहीं कहेंगे, कोई दिन रात जॉब कर रही है उसको नहीं कभी कहेंगे कि तुमने अपना हाल क्या बना लिया, इसको कहेंगे। मुनकर के ऊपर हम शाबाशियां देते हैं और मारूफ कोई करे तो हम उसको डिस्करेज करते हैं अपने कमेंट से, अपनी बातों से। तो पहले तो इल्म लेने की जरूरत है ना, मारूफ और मुनकर है क्या। हमने तो मारूफ और मुनकर के क्या किससे लिए, सोसाइटी में जिस चीज को कहा जा रहा है, चाहे वो नंगापन है, चाहे वो जिना है, चाहे वो डेटिंग है, चाहे वो बेहयाई के और काम है, वो सारे वो हमारे लिए मारूफ बन चुके। क्यों? इसलिए कि सब उसको कह रहे हैं, अगर किसी ने बेपर्दगी में कोई घूम रहा है तो वो हमारे लिए मारूफ है, और कोई हिजाब और अबाय में है तो वो हमारे लिए मुनकर बन चुका है। खुद देखें कि आज वो उम्मत जिसका काम ये था कि वो और लोगों को भी मारूफ की दावत देती और मुनकर से रोकती, वो उम्मत तो खुद ये भूल चुकी है कि मारूफ होता क्या और मुनकर होता क्या। जब आप शादियों पे जाते हैं तो आप किन चीजों के ऊपर लोगों को एप्रिसिएशन देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं? तो आप सिर्फ खुद गुनाह से बच जाएं ये काफी नहीं है जब तक आपके अंदर गुनाह की नफरत ना हो, और ये मतलूब है आपसे, और ये आपकी गैरत ईमानी का हिस्सा होना चाहिए कि आप गुनाह को गुनाह समझें, गुनाह को गुनाह समझें खुदा के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम अमर बिन मारूफ व नहीं अन मुनकर के फरीजे को छोड़ दोगे तो बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें अपने अजाब की लपेट में ले लेगा, फिर तुम उससे दुआएं मांगोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। तो अमर बिन मारूफ और नहीं अन मुनकर का फरीजा छोड़ देना तो क्या, हम तो अमर किसका कर रहे हैं, मुनकर का, और नहीं किससे कर रहे हैं, मारूफ से। हम किस कदर पस्ती में गिर चुके हैं, उम्मत मुस्लिमा की कश्ती आज तूफान में फंसी हुई है। हम वो लोग हैं जिनका चमन उजड़ चुका है। ये ऐसी सोच, ऐसे रवैये, हमें दूसरों को बदलना था, उनको राह दिखानी थी, हम इंसानियत के लिए खड़े किए गए थे, हमारे अपने ही हाल हो गए। आज मुनकर हमारे सामने टीवी पे चलता है, मुनकर हमारे सामने फोन पे चलता है, मगर हमें कोई परवाह नहीं, हम खुद भी उसके अंदर शामिल होते हैं, इसमें क्या बात है? ऐसे ड्रामे देखने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसी फिल्में देखने से क्या, उसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही है, उसमें जो सीन आ रहे हैं, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, हम क्यों रोके? तो ये इसमें क्या बुराई है? जब हमें खुद ही हम अंधे हो गए तो हम किसी को क्या बताएंगे? और ये कुरान पढ़ने वालों के हालात है, औरों के क्या कहने, और को तो क्या शिकायत करनी, उनको तो बताना था, उनको तो को तो खुद नहीं पता, क्योंकि ये काम किस में होगा, सिर्फ गैर मुस्लिमों में नहीं होगा, ये काम हारे के लिए होगा, अपने लोगों में भी होगा, बाहर वालों में भी होगा, मुसलमानों में भी होगा, गैर मुसलमानों में भी जरूरत होगी इसकी, बाहर वालों के लिए डिफरेंट तरह से होगा, अपने अंदर वालों के लिए डिफरेंट होगा। तो अगर उम्मीद की जरा सी किरण नजर आती है ना, तो वो इन स्टूडेंट्स में नजर आ सकती है जो आज पढ़ रहे हैं, जो जो औरतें पढ़ रही हैं इन इदारों में कुरान पाक को सीख रही हैं, कि ये घर बदलें अब, और इनसे आगे उम्मत बदले, आगे नस्लें बदलें, ये बस इनसे उम्मीद की जा सकती है, वरना आवे का आवा बिगड़ा हुआ। और ये है वजह हमारी जिल्लत की आज, अब हमें देखना है कि हमें कैसे ये काम करना है, अपने दायरे बनाने। पहले हमारा दायरा अपनी जात है, अपनी जात के ऊपर तो अमर बिल मारू नहीं नल मुकर करो ना पहले, फिर उसके बाद बाहर है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, पहले हम मतलब अपने आप को इस जगह पे रखें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये मेरा फरीजा है, पहले तो ये सोचें। और फिर हर जगह पे जहां पे मैंने आपको बताया ना, नेकी का हुक्म देना आसान है, मुनकर से रोकना मना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जरूरी है। हम क्यों उस महफिल में जाते हैं जहां पे अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जाता है? डर है कि मेरे रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, मेरे दोस्त मुझे छोड़ ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन यौमि सू मिन लैलति सू मिन साअति सू मिन जारि सू, बहुत सारी लंबी दुआ है कि अल्लाह बुरे साथी से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। तो क्यों हम उठते बैठते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ उठने बैठने से हमारा दीन खराब हो जाता है, या उठने बैठने से हमारे दिल से अल्लाह रसूल की मोहब्बत कम हो जाती है? कुछ तो मोमिन बने, कुछ तो ईमानी गैरत होनी चाहिए। कोई ईमानी गैरत नहीं है। तुम्हें तो लिन्नास, लोगों की सलाह के लिए पैदा किया गया था। अब नहीं कोई अमर बिल मारूफ कर सकते, नहीं अनिल मुनकर कर सकते, तो क्यों बैठते हो ऐसी जगहों पे? जब अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर होगा ना, तो दुनिया में इस्लाह होगी। और फिर जब भी फिर बेअबाओं, यतीमों, मिस्कीनों का भी ख्याल होता है, तभी जो रिश्तेदारियां तोड़ रहे होते हैं उनको कोई कहने वाला होता है, तभी कोई इंसान बेहयाई से भी बचता है। तो भाई लोग मुझे ये कहेंगे, लोगों को लोगों का डर होता है, अगर जब कोई किसी को कहने वाला ही नहीं। बिद्दतें कर रहे हैं लोग, हम क्यों कहें, जाके खुद ही उन्हीं बिद्दतों के मजलिसों में बैठ जाते हैं। कहना ही नहीं हमने कि भाई ये बिद्दत है, ये नहीं करो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, कहते ही नहीं। क्यों करें, खाने को मिलता है वहां पे, दावत होगी, मजे मजे के खाने मिलेंगे, तो जाएंगे हम वहां। तो किधर आज हम खड़े हैं, खुद सोचें। तो ये काम करना है, और इस काम में जो एहतियातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बहुत एहतियात की बातें हैं, बहुत जरूरी है जानी, वो ये कि जब हम ये काम करेंगे ना, तो बाज दफा होता ये है कि अपने अंदर तकब्बुर आने लगता है, अपने आप को इंसान बड़ा नेक समझने लगता है, तो उनके बस खामियां नजर आने लगती हैं, फलाना वो भी ऐसे कर रहा है, फलाना वो भी ऐसे कर रहा है, वो देखो वो देखो लोग क्या करते हैं, वो देखो वो क्या करते हैं, इनको तो समझा समझा के थक गए हैं। तो अब क्या आने लगता है आहिस्ता आहिस्ता, अपने अंदर तकब्बुर के मैं तो देखो कितनी अच्छी हूं ना, और ये देखो कितने बुरे, देखा ये कैसे करते हैं, देखा ये अच्छा, सिवाय उस बंदे के, बाकी सारों को वो बातें कहनी, उसको नहीं जाके कहनी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, हालांकि मना तो उसको करना था ना जो बुरा कर रहा था। तो अपने अंदर तकब्बुर आने लगता है कि हम कितने अच्छे हैं ना, देखो हम तो नहीं ये करते। इस चीज से बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि शैतान बड़ी जल्दी नेकी का जो एक तकब्बुर है वो इंसान के अंदर पैदा कर लेता है। दूसरे दूसरे को बुरा काम शुरू करते हैं, बहुत गुस्सा आने लगता है, हमने गुस्सा नहीं किया था। फिर तीसरी चीज क्या होती है, अपनी फिक्र खत्म हो जाती है, फिर बस हर टाइम अब मैं उसको किसको मना करूं, तो उसको किसको मना करूं। मैंने आपको क्या पहले बताया, अपने आप के ऊपर सबसे पहले वर्क करना शुरू करना है। लेकिन ये चीज हमें रोकना नहीं चाहिए कि हम किसी को क्या मना करेंगे, हमने तो खुद में इतनी बुराइयां। तो ये याद रखिए कि एक असलाफ में से किसी ने फरमाया बड़ी अच्छी बात, कि अगर हम इस चीज को देखें कि पहले मैं खुद सही हो जाऊं फिर उसके बाद दूसरों को बताऊंगा, मैं पहले खुद कामिल हो जाऊं फिर दूसरों को मना करूंगी, मेरे अंदर तो खुद बुराई है, तो वो फरमाते हैं कि फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई भी परफेक्ट नहीं, फिर तो किसी को भी नहीं ये काम करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कौन है, सारे ही पहले फिर अपनी अपनी फिक्रें करो। तो ठीक है वो अपनी फिक्र भी करनी है, लेकिन साथ ये काम भी करना। मगर जो मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये ना हो कि दूसरों की फिक्र करते करते अपनी भूल जाए, अपनी फिक्र है नहीं, अपने खुद क्या करना है, ये बच्चे ऐसे करते हैं, हस्बैंड वो करते हैं, हमसाए ये करते हैं, मेरी दोस्तें तो ऐसा करती हैं, फलाने ये करती है, हर टाइम दूसरों के ऊपर नजर, बस घर वाले भी तंग पड़ जाएं कि क्या मुसीबत इसने कुरान पढ़ना क्या शुरू कर दिया, हमारे ऊपर मुसीबत डाल दी। ये तरीके नहीं होते। तो हिकमत इसमें बहुत जरूरी है कि हिकमत के साथ हमें चलना है। मैंने आपको ये बताया कि अमर बिन मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप डंडे लेके खड़े रहें, नहीं, अनिल मुनकर का ये नहीं मतलब। आप समझ आ गई ना कि किस किस तरह के मतलब है, कहां आप किस तरह से डील करेंगे, ये भी हिकमतों के साथ है। ठीक है, तो अब ये ना हो दूसरों की कमियां हमें अपने आप की कमियां देखने से माजूर कर दें। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने इस काम को करने में। एक क्या, अपने अंदर तकब्बुर ना आने दीजिएगा। दूसरा क्या, दूसरों की कमियां आपको अपने आप को देखने से आजाद ना कर दें, अपनी परवाह करने से आजाद ना कर दें। तीसरा क्या, गुस्से में नहीं आना है। तो ये बात है कि हिकमत इसके अंदर बड़ी जरूरी है। इस काम को अगर हिकमत से नहीं करेंगे तो उल्टा भी असर हो सकता है। बाज बच्चियां मैंने देखा, उन्होंने मुझे खुद बताया कि हम इसलिए नहीं मस्जिद जाते, वहां पे ये आंटियां हमें इतना कमेंट्स करती हैं, इस तरह की बातें हमें सुनाती हैं, तो हम नहीं जाते। तो इसमें पहले इतना मुझे खुद डर लगता है ना ऐसी चीज से कि मुझे बहुत देर मैं किसी को कहने से पहले बहुत सोचती हूँ, प्लान करती हूँ कि कैसे मैं इसको किस तरह से बात करूं। क्यों, इसलिए ये ना हो कि मेरी किसी गलत अप्रोच से ये और ही उससे भाग जाए, ये उसको नफरत हो जाए, या ये मस्जिद ही ना आए, या ये इस काम से ही ना इसको हो जाए कि इस काम की वजह से मुझे इस बातें सुननी पड़ती थी। तो इसके अंदर बड़े तरीके के साथ चलना होता है। ठीक है, तो ये काम करना है, लेकिन करना कैसे है ये भी हमें सोचना चाहिए। ये काम ऐसा नहीं है कि बस हमने सर पे उतारना, जी हमने तो कह दिया था। ये खैर ख्वाही, जैसे पैगंबरों में खैर ख्वाही होती थी ना, ये खैर ख्वाही का काम है। ये ऐसे मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पता है ये काम क्या है, कि आप खुद जाग गए हैं, अब आपने सोतों को जगाना है। एक हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने आप को हकीर ना जाने। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह हम में से कोई शख्स कैसे अपने आप को हकीर जान सकता है? आपने फरमाया, वो ये गुमान करे कि उसके ऊपर कलाम की गुंजाइश है, फिर वो कलाम ना करेगा, यानी कुछ कह सकता है मगर नहीं कहेगा। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कयामत के दिन इससे फरमाएगा, तुम्हें मेरे मुतल्लिक किस चीज ने कलाम से रोका था, क्यों नहीं तुमने कुछ बोला? वो कहेगा, लोगों के खौफ ने। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं इस बात का ज्यादा हकदार था कि तुम मुझसे खौफ खाते ना कि तुम लोगों से डर रहे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए तो इनके उलमा ने उनको मना किया था, शुरू में मना किया था, लेकिन वो बाज नहीं आए। जब वो बाज नहीं आए तो उलमा उनकी मजलिसों में बैठते रहे और उनके साथ मिलके खाते पीते रहे। ठीक है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह ताला ने उनमें से बाज के दिल उन जैसे ही कर दिए, फिर यानी फिर सबके दिल एक ही हो गए, अब उनको वो बुराई बुराई नहीं लगती थी। इसीलिए आप देखें ना, जब हम बुराइयों के साथ बैठते रहते हैं, बुराइयों को देखते रहते हैं, उनको वॉच करते हैं, फिर उसके बाद वो बुराइयां हमारे लिए कितनी कॉमन हो जाती हैं, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें, आज से कोई 20-25 साल पहले कई चीजों के नाम, ये जो आज मैं कौमे लूट के अमल का कह रही हूँ, ये यकीन जाने, यानी जब तक मैं बड़ी हो गई थी हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, हमें नहीं पता था, इन मुल्कों में आके पता चला। इसी तरह ये नंग धड़ंग टीवी पे, इन चीजों में कोई होता ही नहीं था इस तरह की चीजें, और आज देखें क्या लिबास हैं और क्या टॉपिक्स हैं और क्या चीजें दिखाई जाती हैं। इसी तरह कितनी सिंपल शादी ब्याह होते थे, कितने सिंपल होते थे, आज देख लें कि वो क्या बन गए। पहले लोग तवायफों के अड्डों पे जाया करते थे कोई एक तरह की नाच गाने देखने के लिए और नाचती औरतों को देखने के लिए, आज लोगों ने अपनी बेटियों से नाच करवाते, अपनी बहनों को नाचते हुए लोगों के सामने नचवाते मेहंदियों पे और इन पे, और बड़े फखर करते हैं। वो चीजें जो कितनी बुरी समझी जाती थी, आज क्या हाल है, क्यों ऐसे, क्यों हमारे पैमाने बदल गए? क्योंकि बुराइयों को देख के हमने उनको रोका नहीं। जब बुराइयां शुरू हो रही थी तो हमने, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या है ना, इतनी भी नहीं होना चाहिए, क्या है, एंजॉय करने देना, आप लोग तो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो जब आप वो जो आगे जाके एक बड़ी बुराई बननी है उसके असबाब को नहीं रोकते, वहीं से उस चीज को वही खत्म नहीं करते जब वो शुरू हो रही होती, तो फिर आगे जाके यही होता है जो आज हो रहा है। जब इस तरह की चीजें देखिए एक दिन में नहीं होती, ये टाइम लगता है कि शैतान पहले छोटी डोज देता है। क्यों कहा गया कि वला तत्तबी और खुतुआत शैतान, इसके कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि ये इसके कदम है। ये एक छोटी डोज देता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर एक एक स्टेप लेके चाहता है आगे। ये एक दिन के नहीं काम होते। तो शैतान किस तरह हमारे वो नॉर्म जो आज हमारी नानियां दादियां जिंदा होके आ जाए और वो देखें, तो वो तो हैरान ही हो जाए। सिर्फ उनके टाइम से आज तक इतना बदल चुका है, तो उससे पहले का तो क्या कहने। और ये सिर्फ इस वजह से कि हम बुराइयों को बर्दाश्त करते रहे, हमने कुछ नहीं बोला और वो आगे से आगे बढ़ती चली गई। आज शराबें पीना या जिनाकारियां या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जितनी और आप बुराइयां देख लें, बेहयाइयों के सीन्स देखना, नाच गाने को वॉच करना, ये सब चीजें कुछ भी मुश्किल, कोई बात ही नहीं रह गई। झूठ बोलना, रिश्वतें लेना, धोखेबाजी करना, हराम को खाना, हराम कमाइयां करना, ये कोई मसला नहीं है। औरतों के चुस्त लिबास पहनना, ये कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाथ पे हाथ मार के गैर महरमों से बातें करना, क्या इसमें प्रॉब्लम? आप पागल लगते हैं, वो तो नॉर्मल लगते हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त करते चले गए, हमने इसको अलाउ किया, हम मुजरिम थे, इस वजह से आज का ये दिन देखना पड़ा। ठीक है, कहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तक एहतियात बताई कि जब बच्चे बड़े जाए उनको साथ ना लेटाओ, जब दो बच्चे, दो लड़के या दो लड़कियां एक ही बिस्तर के अंदर, एक ही लिहाफ के अंदर इकट्ठे ना हो, कितनी एहतियातें बताई। हमने कोई फॉलो ही नहीं किया, हमें क्या, हम तो ना कुरान को जाना ना सुन्नत को जाना, हमें क्या पता। तो बुराइयां पनपने लगी फिर, और आज स्कूलों के बच्चों को भी पूछ लो तो उनको भी इन बातों का पता, कहां से पता चलेगा बुराई को आम होने की वजह से। अल्लाह अकबर। और फिर एक और हदीस में आता है जो अबू दाऊद की, इब्ने माजा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी कौम में रह के गुनाह कर रहा हो और वो लोग इसको गुनाह से रोकने पर कादिर हो और ना रोके, कि हमें क्या मुसीबत है, हम क्यों रोके, तो अल्लाह ताला इन सबको मरने से पहले अजाब में मुब्तला करेगा सबको। एक और जगह पे आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मेरी उम्मत में उन लोगों को देखो जो जालिम को जालिम कहने से डरे तो तुम उनसे अलग हो जाओ। फिर एक और हदीस में आता है, इब्ने हब्बान की है, तरगीब व तरहीब में भी है, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे और नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके, वो हम में से नहीं है। अब और कितनी हदीसें चाहते हैं और कुरान की आयत ये सामने है, और हम में से नहीं है, तो फिर देख लेना आज आप हमारी जिल्लतों की जो दुनिया में हालात हैं, जो हमारे जवाल के हालात हैं, वो आप सब देख रहे हैं। फिर हम पूछते हैं क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं तुमने ये काम ही खत्म कर दिया, तुम तो खैर उम्मत बने ही नहीं। हजरत उमर के कॉल के मुताबिक अब जो इस शर्त को पूरा करेगा वो ही खैर उम्मत में से है, जो ये काम नहीं करेगा वो उसमें से नहीं है। तो हम फखर तो बहुत कर रहे हैं कि हम खैर उम्मत हैं, देखो हम बेहतरीन उम्मत, हमारे बारे में ये आदि हमारे बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो ये काम करते हैं, वो है खैर उम्मत। और हम किधर हैं, हमारे अपने खानदानों में जुल्म हो रहा होता है, हमारी अपनी बाज दफा माएं हमारी भाभियों के साथ जुल्म कर रही होती, हमारे अपने भाई बाज दफा अपनी बीवियों के साथ कोई गलत बात कर रहे होते हैं, हमारी अपनी बहनें गलत काम कर रही होती, हम नहीं रोकते, हम कहते हैं हमें क्यों, हमें क्या, मैं क्यों बिगाड़ू। उनको भी आप अमर बिल मारूफ करेंगे और नहीं अनमुनकर करेंगे, मगर वालदैन को करने का एक और तरीका होगा। आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं सिर्फ कह सकते कि कश्मीर में अगर जुल्म हो रहा है तो वो ही बस मुनकर है, उसके खिलाफ ही सिर्फ मैंने आवाज उठानी। हर जगह, हर जगह आप जिधर देख रहे हैं, जिधर का सुन रहे हैं, जो मुनकरात आप देखते हैं उनको रोकने की कोशिश करें। अब वहां जाके तो नहीं आप रोक सकते, ना हाथ से रोक सकते, कुछ जुबान से ही बोल दो। कई और जगह है जहां पे आप जुबान से भी नहीं बोल सकते, वहां पे जुबान से बोलने पे भी कैद कर दिया जाता है। तो दिल में ही बुरा जान लो, कुछ तो करो।
या कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, उसमें भी डरते हो, तो जितनी आपकी कुदरत है उसके मुताबिक तो एक्शन ले ना।
अल्लाह ताला इन आयात को समझने की और इन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।